आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अनु और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ये क्लास 10th के साइंस का 11th चैप्टर है और आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से कि इस चैप्टर के अंदर हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ लिया है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ पर देखा था कि अगर किसी को आईज डोनेशन करनी हो तो उनको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी होती है। तो किसी भी जेंडर के लोग, किसी भी एज ग्रुप के लोग आईज डोनेट कर सकते हैं, चश्मा लगाते हों नहीं लगाते हों, कैटरैक्ट का ऑपरेशन हुआ हो, किसी भी तरीके के लोग कर सकते हैं, उनको डायबिटीज हो, हाइपरटेंशन हो, अस्थमा हो और कोई ऐसी बीमारी हो जो कम्युनिकेबल नहीं है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं ट्रांसफर हो सकती, इस तरीके भी कोई बीमारी होगी तो भी वो लोग अपनी आईज डोनेट कर सकते हैं। डेथ के बाद 4 से 6 घंटे के बीच में आईज को रिमूव किया जा सकता है और यहाँ पर आईज बैंक में उसको रखा जा सकता है, प्रिजर्व किया जा सकता है। उसके बाद हमने देखा था कि बस 10 से 15 मिनट लगते हैं आईज को रिमूव करने के लिए, ऑपरेशन जो होता है, और इससे बॉडी को कोई डिसफिगरमेंट नहीं होती है क्योंकि सिर्फ छोटा सा ऑपरेशन होता है। उसके बाद हमने देखा था कि अगर किसी को एड्स हो, हेपेटाइटिस बी हो, सी हो, रेबीज हो, या फिर ल्यूकेमिया हो, टिटनस हो, कॉलेरा हो, मेनिनजाइटिस हो या फिर एंसेफेलाइटिस हो तो ये लोग आईज डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारी बातें जो होती है हमें ध्यान में रखनी होती है जब हमें आईज डोनेशन के बारे में सोचना होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ना शुरू किया था अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है रेक्टेंगुलर ग्लास के थ्रू किस तरीके से रिफ्रैक्शन होता है लाइट का, और लास्ट क्लास में हमने एक्टिविटी कर ली थी, एक्टिविटी 11.1, जिसमें हमने देखा था कि प्रिज्म से कैसे रिफ्रैक्शन होता है लाइट का। तो लाइट को अगर हम ओब्लिकली पास कराएं किसी प्रिज्म के एक फेस से तो दूसरे फेस से वो ओब्लिकली निकलती है, और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में जो इंसिडेंट रे थी उसके पैरेलल इमर्जेंट रे होती है, लेकिन प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। जो इंसिडेंट रे होती है और जो इमर्जेंट रे होती है, बेसिकली इनके बीच में इनफैक्ट एक एंगल होता है जिसे हम एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। तो जिस पाथ से गुजर रही थी हमारी इंसिडेंट लाइट उसके साथ एक एंगल बना करके हमारी इमर्जेंट लाइट निकलती है। तो ये हमने रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में नहीं देखा था क्योंकि वहां पर इनके बीच कोई एंगल नहीं था, उनमें शिफ्ट हो गया था। जो इंसिडेंट लाइट थी उसकी पाथ दूसरी थी और इमर्जेंट लाइट की पाथ दूसरी थी, लेकिन दोनों आपस में पैरेलल थे। लेकिन प्रिज्म के केस में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म के केस में ऐसा होता है कि जो इंसिडेंट लाइट होती है उसके पाथ जो होती है उसके साथ कुछ एंगल बना करके इमर्जेंट लाइट का पाथ होता है। तो इनके बीच में जो एंगल होता है उसे एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। जो एंगल इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के साथ बनाती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। जो इमर्जेंट लाइट है वो परपेंडिकुलर के साथ या नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसे एंगल ऑफ इमर्जेंस कहते हैं। और एक और एंगल के बारे में हमने बात की थी, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन तब होता है जब मीडियम ऑफ प्रोपगेशन चेंज होता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रिज्म में जब लाइट पास करती है तो वहां पर 2 बारी रिफ्रैक्शन होता है। पहला तो तब जब एयर से ग्लास के अंदर लाइट एंटर करती है तो वहां पर जो रिफ्रैक्शन का एंगल होता है उसे हम R1 से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद दूसरा रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट ग्लास से एयर में आती है, तो यहाँ पर भी एक रिफ्रैक्शन होता है, तो इसे R2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये दोनों क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। और रिफ्रैक्शन का एंगल देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिफ्रैक्टेड रे है वो परपेंडिकुलर के साथ क्या एंगल बना रही है ये आपको चेक करना है। उसके बाद हमने प्रिज्म का एंगल क्या होता है वो भी देखा था, एंगल ऑफ प्रिज्म। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको ड्रॉ करना होगा आउटलाइन आपके प्रिज्म का, और आप उसके किसी भी एंगल को, वर्टिसेस जो 3 वर्टिसेस होते हैं तो उनमें से किसी भी एक वर्टिसेस का, एक भी वर्टेक्स का आप एंगल चेक कर सकते हैं, तो आपको एंगल ऑफ प्रिज्म पता चल जाएगा। और आपने जो एक्टिविटी की थी पेज नंबर 192 पर जो थी उसका जो रिजल्ट मिला था वो आपको फिगर 11.4 में इस तरीके का कुछ आपको पिक्टोरियल रिजल्ट मिला था, और इसमें जो बाकी सारी चीजें हैं वो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर ली थी और अभी भी डिस्कस कर ली। तो यहाँ पर मेन पॉइंट जो याद करके रखने वाली है वो ये है कि जब इंसिडेंट लाइट पड़ती है प्रिज्म के एक फेस पर तो दूसरे फेस से जब वो निकलती है तो डेविएट हो जाती है, जो भी उसका पाथ रहता है वो उसके साथ कुछ एंगल बना करके एमर्ज होती है दूसरे फेस से, प्रिज्म के दूसरे फेस से। तो यही बात इम्पॉर्टेंट है और इसी को बेस बना करके हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज का टॉपिक है डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय ग्लास प्रिज्म। डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट पढ़ना है। डिस्पर्शन क्या होता है, डिस्पर्शन बेसिकली होता है, आपने सबसे पहले तो व्हाइट लाइट के बारे में पढ़ना है, उसके बाद डिस्पर्शन के बारे में पढ़ना है। तो व्हाइट लाइट क्या होती है, व्हाइट लाइट बेसिकली सूरज से जो लाइट आ रही है वो भी एक व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट एक ऐसी लाइट है जो बहुत सारे रंगों से मिलकर के बनी है, लेकिन हमें वो एक सिंगल व्हाइट कलर दिखती है। बहुत ब्राइटनेस होने की वजह से उसके जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो उसके अंदर मर्ज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो हमें उसके अलग अलग कंपोनेंट्स नहीं दिख रहे होते हैं, व्हाइट लाइट उसे कहते हैं। और व्हाइट लाइट का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सूरज से आती हुई रोशनी। सूरज से आती हुई रोशनी जो होती है वो हकीकत में तो बहुत सारे अलग रंगों से मिलकर के बनी है, लेकिन हमें वो सिंगल मर्ज होकर के दिखती है। तो सूरज से आती हुई रोशनी एक व्हाइट लाइट का एग्जाम्पल है। अब डिस्पर्शन की बात करिए, डिस्पर्शन को समझने के लिए यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी करने के लिए कहा गया है। एक्टिविटी 11.2 पेज नंबर 193 पर है। बहुत इजी एक्टिविटी है, इसे आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इसको करने के लिए क्या चाहिए होगा, आपको एक कार्डबोर्ड चाहिए होगा, मोटा कार्डबोर्ड, जो गत्ता होता है मोटा गत्ता, वो आपको चाहिए। अब उसमें क्या करिए, आपका एक नॉर्मल कार्डबोर्ड लेंगे, एक रेक्टेंगुलर शेप का या फिर स्क्वायर शेप का भी लीजिए, कोई सा भी शेप का लीजिए। आपको बेसिकली उसमें एक होल कर देना है, एक छेद कर देना है आपको, गोल सा और अच्छा सा नैरो होल करना है आपको, छोटा, बहुत मोटा सा होल नहीं करना है, छोटा, मिडिल में कहीं पर भी होल कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सूरज से जो रोशनी आ रही है उसको इस नैरो होल से पास कराना है, और इसी नैरो होल से पास करती हुई उसके बाद एक बीम ऑफ लाइट निकलेगी, क्योंकि सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है, जिधर से भी रास्ता मिलता है वहां से वो लाइट एंटर करती है। तो आपने क्या किया है, बेसिकली आपने एक कार्डबोर्ड लिया है, उसमें एक स्मॉल होल कर दिया है, इसके थ्रू लाइट निकलेगी और वो एक बीम की तरह निकलेगी, एक बीम ऑफ लाइट की तरह वो उस होल से निकलेगी। अब वो जो बीम निकल रही है उसको आप क्या करना है, उसको आपको प्रिज्म पर उसको इंसिडेंट कराना है। इसका मतलब आपको क्या करना है, बेसिकली जो भी रास्ता हो बीम का, लाइट का जो रास्ता है, उसी रास्ते पे आपको रख देना है प्रिज्म को। अब आपने जो ये प्रिज्म लाइट के रास्ते में रख दिया है, अगर आपको रखते ही तुरंत दूसरे वाले फेस से डिफरेंट कलर ऑफ लाइट दिखना शुरू हो गए हैं, तब तो आपका एक्टिविटी यहीं कंप्लीट हो गया है। लेकिन अगर आपको कलर, अलग अलग कलर्स नहीं दिख रहे हैं दूसरे फेस से प्रिज्म के, तो आपको थोड़ा थोड़ा रोटेट, थोड़ा बहुत इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा करके, टेढ़ा मेढ़ा मतलब रोटेट करिए, थोड़ा सा उसको कुछ एंगल पे करिए, लाइट के एक साथ कुछ एंगल बनाता हुआ बनाइए, प्रिज्म का जो फेस है उस पर जब लाइट पड़ रही है तो उसके साथ कुछ एंगल बनाती हुई पड़नी चाहिए। इस तरीके से थोड़ा बहुत रोटेशन आप प्रिज्म को दीजिए। उसके बाद जैसे ही आप थोड़ा बहुत रोटेशन कर रहे होंगे, उसी वक्त जैसे ही आपको दूसरे फेस से बैंड कलर का, डिफरेंट कलर के कंपोनेंट्स का बैंड दिखने लग जाए, तो वैसे ही आप वहीं पर रुक जाइए। और आप अब नोटिस क्या करेंगे कि आपने प्रिज्म के एक फेस से तो व्हाइट लाइट पास कराई, लेकिन दूसरे फेस से अलग अलग कलर की लाइट दिख रही थी आपको। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको पिक्टोरियली भी दिखाया गया है पेज नंबर 193 पर, फिगर 11.5 में आपको डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय द ग्लास प्रिज्म इस तरीके से फिगर 11.5 में दिखाया है। आपने क्या किया है, आपने प्रिज्म के एक फेस से व्हाइट लाइट पास कराई है और दूसरे फेस से आपको अलग अलग कलर की लाइट्स दिख रही हैं। ये बैंड ऑफ कलर्स निकलते हैं, इसी को कहते हैं डिस्पर्शन। जब लाइट प्रिज्म से पास होके अपने अलग अलग कंपोनेंट्स में बट जाए, वो वापस से अपने कंपोनेंट्स में नजर आने लगे, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्पर्शन। इस फिनोमिना को, इस प्रक्रिया को कहते हैं डिस्पर्शन, जिस प्रक्रिया के अंदर व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होने के बाद अपने कलर के कंपोनेंट्स में विभाजित हो जाती है, वापस से अपने असली रूप में नजर आने लगती है। और उसका असली रूप क्या है, उसका असली रूप है कि वो अलग अलग रंगों से मिलकर के बनी है, लेकिन हमें दिखती नहीं है। तो यहाँ पर प्रिज्म जो है वो हेल्प करता है उसके अलग अलग रंगों को दिखाने के लिए। तो ये जो बैंड ऑफ लाइट बन गया है व्हाइट लाइट से, तो ये जो प्रक्रिया है जिसके जरिए ये बना है, इसे डिस्पर्शन कहते हैं। अब यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि जो ये बैंड है लाइट कलर का, अलग अलग कलर्स का बैंड है, तो कलर कौन कौन से होते हैं बेसिकली हमारे व्हाइट लाइट में। तो हमारे व्हाइट लाइट में बेसिकली विबग्योर, इस एक्रोनिम से आपको याद रखना है, और इसमें आप देख सकते हैं कि 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं। फिर से सुन लीजिए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सारे कलर्स होते हैं। 7 कलर्स होते हैं बेसिकली हमारे जो व्हाइट लाइट होता है उसमें। अब ये 7 कलर्स को याद इसी ऑर्डर में होते हैं, ये हमेशा विबग्योर के ऑर्डर में ही होते हैं, यानी कि पहले वायलेट होगा, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड, इस तरीके से होते हैं। अब ये कौन सा ऑर्डर है, ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ का ऑर्डर है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी का भी ऑर्डर है। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो क्या याद रखना है आपको, वायलेट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है, वेवलेंथ सबसे कम होती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। और ये हमेशा इसी ऑर्डर में रहते हैं, विबग्योर के ऑर्डर में रहते हैं। तो जो स्पेक्ट्रम होता है मतलब कि अलग अलग जो लाइट होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेव्स जो होती हैं, उनको उनके वेवलेंथ के अकॉर्डिंग कौन से का सबसे ज्यादा है, कौन से का सबसे कम है, इसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, स्पेक्ट्रम होता है जितनी भी सारी वेव्स है हमारे पास, उन सभी वेव्स को हम इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज करते हैं या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो विबग्योर जो है, ये विबग्योर जैसे लिखा हुआ है ना, यहाँ पर आप लोग देखो एक्रोनिम दिया गया है आपको, VIBGYOR कैपिटल लेटर्स में आपको लिखा हुआ है पेज नंबर 193 पर। तो विबग्योर जो ये लिखा हुआ है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर के उसमें, इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में ही आपको दिया है। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है, वायलेट की है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ जो है वो रेड की होती है। तो इस तरीके से तो हम स्पेक्ट्रम जितनी भी वेव्स हैं उन सबको कैसे अरेंज करते हैं, इंक्रीजिंग वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी के ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो ये जो आप लोगों को ये दिया है एक्रोनिम, तो ये इससे आप याद कर सकते हैं कि कितने जो ये 7 कलर्स हैं ये किस तरीके से अरेंज होते हैं। तो प्रॉपर अरेंजमेंट में ही आपको ये नाम यहाँ पर याद करने होते हैं। और विबग्योर ये बहुत आसान तरीका है, ये आप याद कर सकते हैं। उसके बाद सब बात जो जरूरी है वो ये है कि आपको हो सकता है कि जब प्रिज्म से पास होकर के जो बैंड ऑफ कलर्स दिख रहा हो वो आपको सेपरेट सारा नहीं दिख रहा होगा, सबके सब इंडिविजुअल कलर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे। ऐसा हो सकता है कि एक दूसरे के ऊपर अभी भी थोड़ी बहुत मर्जिंग है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रहा है थोड़ा बहुत, अभी भी आपको सारे साथ के साथ कलर जो है वो एकदम डिस्टिंक्टली नहीं दिखेंगे, सेपरेटली नहीं दिखेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये पता चल जाएगा कि थोड़ा बहुत यहाँ पर कंपोनेंट्स जो है वो फॉर्म हो चुके हैं। तो यही जो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पर्शन। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको क्यों बताया कि जो रेड कलर की जो लाइट है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, या फिर वायलेट कलर की लाइट की सबसे कम वेवलेंथ है, या फिर आपको ये क्यों बताया गया कि जो वायलेट कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, रेड कलर की लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। ये इसलिए बताया गया ताकि आपको ये बताया जाए कि कौन से कलर की लाइट की डेविएशन सबसे ज्यादा होती है, कौन सा कलर का लाइट अपने पाथ से सबसे ज्यादा भटकता है। तो यहाँ पर आपको मैं एक रिलेशन बता रही हूँ जिसे आप याद करके रख सकते हैं और आपको ये काम आएगा जब आप लोग 12th में जाएंगे तब भी। जो वायलेट कलर है इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो जिस भी लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वो उतना ही ज्यादा डेविएट होता है। डेविएशन जो है ये आप कह सकते हैं कि इट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। तो या तो आप ये कहें कि वेवलेंथ के उल्टा प्रोपोर्शनल है, या आप ये कहें कि वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो बात एक ही पड़ जाएगी। तो आप वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में चेक करें या फिर फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में चेक करें, आपको ये पता चलेगा कि वायलेट कलर की जो लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, इसकी डेविएशन सबसे ज्यादा होती है, और जो रेड कलर की लाइट है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, इसकी डेविएशन सबसे कम होती है। और आपको ध्यान होगा कि मैंने आपको बताया था क्लास के शुरुआत में ही कि कारण क्या है जो हमें ये अलग अलग कलर ऑफ लाइट दिख रहे हैं व्हाइट लाइट से, इसके पीछे का कारण क्या है। तो कारण यही है कि अलग अलग कलर ऑफ लाइट्स जो हैं जैसे ही प्रिज्म से पास करते हैं तो ये क्या करते हैं, ये डेविएट हो जाते हैं अपने अपने पाथ से। तो अलग अलग कलर की लाइट अलग अलग डेविएशन करती है जिसकी वजह से अलग अलग पाथ हो जाता है। तो इसीलिए हमें अलग अलग जो कलर्स है वो साफ नजर आने लगते हैं, क्योंकि रेड जो है वो कम डेविएट होगा, वायलेट जो है वो ज्यादा डेविएट हो जाएगा, तो इनके दोनों के रास्ते अलग हो गए। तो इसीलिए हमें जो 7 बैंड्स हैं ये कलर लाइट के, जो अलग अलग जो कलर के लाइट्स हैं इनकी बैंड जो है वो साफ नजर आने लगती है, क्योंकि इनके डेविएशन अलग अलग होते हैं। जैसे ही ये प्रिज्म से पास करते हैं तो इनका पाथ बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है व्हाइट लाइट के पाथ से, और जो जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखता होगा वो उतना ही ज्यादा डेविएट होगा। तो सबकी डेविएशन अलग होने की वजह से ही हमें ये 7 बैंड्स ऑफ कलर दिखने लगता है। तो यही आप लोगों को यहाँ पर एक लाइन लिखी हुई है, आप देखिए पेज नंबर 193 पर आपको एक लाइन लिख करके दी गई है एक्टिविटी देने के बाद में। सेकेंड पैराग्राफ जो है एक्टिविटी 11.2 के नीचे जो सेकेंड पैराग्राफ है, इसमें सेकेंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन देखिए, इसमें लिखा है कि इट इज द बैंड ऑफ डिस्टिंक्ट कलर्स दैट वी सी इन अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इज नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ अलग अलग लाइट्स या फिर अलग अलग वेव्स, अलग अलग वेव्स की अरेंजमेंट को उनके इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो यहाँ पर हमें जो ये स्पेक्ट्रम दिख रहा है कलर्स का, अलग अलग कलर्स का जो स्पेक्ट्रम दिख रहा है, ये क्यों दिख रहा है? इसीलिए दिख रहा है क्योंकि सारी की सारी कलर्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो गई हैं, इनकी अलग अलग डेविएशन होने की वजह से, इनका पाथ अलग होने की वजह से हमें ये सारी जो अलग अलग कलर की कंपोनेंट्स है ये नजर आने लगती है और एक स्पेक्ट्रम फॉर्म होता हुआ दिखता है। उसके बाद कहते हैं कि सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने ये स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन किया था सनलाइट से पास करा करके, एक ग्लास प्रिज्म से पास करा के सनलाइट को और स्पेक्ट्रम ऑब्टेन करने का सबसे पहले बार ये काम जो किया था आइज़ैक न्यूटन ने किया था। न्यूटन आपको पता है बहुत ही ज्यादा इन्होंने डेवलपमेंट की है फिजिक्स की, तो उनमें से एक डेवलपमेंट ये भी है कि इन्होंने स्पेक्ट्रम की फॉर्मेशन करके दिखाई थी फ्रॉम सनलाइट यूजिंग अ ग्लास प्रिज्म। उसके बाद इन्होंने सोचा कि एक प्रिज्म लगाने से अगर इस तरीके से सात रंग में व्हाइट लाइट डिवाइड हो जा रहा है तो हो सकता है कि एक और प्रिज्म लगाऊं तो और भी सारे हमें कलर्स दिखें, बहुत ज्यादा और दिखें। ऐसा इन्होंने किया लेकिन इन्हें और ज्यादा कलर्स नहीं दिखे क्योंकि सेवन कलर्स ही होते हैं जिनसे व्हाइट लाइट बनता है, लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था। तो इन्होंने सोचा कि क्या पता एक और प्रिज्म लगाने से थोड़ी और भी ज्यादा कलर्स दिखें और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स दिखें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उनको और दूसरे कलर्स नहीं मिले। तो उन्होंने क्या किया नेक्स्ट, उन्होंने क्या किया ऐसे ही प्रिज्म्स के साथ, ही वाज प्लेइंग एक्चुअली, खेल रहे थे अब अपने एक्सपेरिमेंट को और भी ज्यादा आगे बढ़ा रहे थे। तो उन्होंने क्या किया कि प्रिज्म जो लगाया था उन्होंने उससे लाइट डिस्पर्स हो गई, अलग अलग कलर कंपोनेंट्स में डिवाइड हो गई। फिर उन्होंने एक दूसरा प्रिज्म लिया और उस पहले वाले प्रिज्म के साथ लगाया लेकिन उल्टा करके, इन्वर्ट करके लगाया। तो इस बार इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि पहले जो व्हाइट लाइट थी पहले वाले प्रिज्म से पास हुई, डिस्पर्स हो गई। फिर दूसरा प्रिज्म इन्होंने इस बार इन्वर्टेड पोजीशन में लगाया पहले वाले प्रिज्म के साथ लगा करके, तो यहाँ पर जो डिस्पर्स हुई लाइट थी वो दूसरे वाले प्रिज्म से पास होके वापस से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो गई। तो उन्होंने देखा कि अगर हम दो ग्लास प्रिज्म्स लगाएं जिनका एंगल ऑफ प्रिज्म सेम हो और एक को सीधा लगाएं दूसरे को इन्वर्ट कर दें तो जो व्हाइट लाइट पास हो रही है दोनों प्रिज्म से पास होने के बाद वो वापस से व्हाइट हो जाती है, तो डिस्पर्शन एक्चुअली कैंसिल हो गया दूसरा वाला प्रिज्म उल्टा लगाने की वजह से। तो ये फिनोमेना भी इन्होंने ही सबसे पहले ऑब्जर्व किया था और इसके बारे में भी आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में कि किस तरीके से हम डिस्पर्शन को कैंसिल कर सकते हैं। और आइज़ैक न्यूटन के इस एक्टिविटी से उनको ये जानकारी मिल गई थी कि सनलाइट जो है वो बेसिकली सिंगल लाइट नहीं है, वो सात रंगों से मिल करके बन रही है, सात कलर्स की लाइट से मिल करके बनती है हमारी सनलाइट। उसके बाद यहाँ पर देखो आपको डायग्रामेटिकली भी दिखाया गया है पेज नंबर 193 पर फिगर 11.6, किस तरीके से आइज़ैक न्यूटन ने पहले एक प्रिज्म लगाया फिर उसमें से डिस्पर्शन हुआ, डिस्पर्शन को वापस से एक इन्वर्टेड प्रिज्म से पास कराया और वापस हमें एक व्हाइट लाइट मिल गई। तो यही एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था जो आप लोगों को यहाँ पर डायग्राम से दिखाया गया है। और इसकी ऑब्जर्वेशन तो आप लोगों को समझ में आ गई कि व्हाइट लाइट जो है वो बेसिकली एक किसी सिंगल कलर से नहीं मिल करके बनी है, सात रंगों से मिल करके बनी है। तो ऐसे ही सनलाइट की तरह अगर कोई और भी लाइट है जो इस तरीके से स्पेक्ट्रम शो करती है प्रिज्म से पास होने के बाद तो उसे हम व्हाइट लाइट कह देते हैं। तो यहाँ पर तो आपने बेसिकली खुद से करवाया है, एक्टिविटी की है, प्रिज्म से पास कराया है लाइट को और आपको स्पेक्ट्रम का फॉर्मेशन होता हुआ दिखा है। आपने कभी नेचुरल स्पेक्ट्रम भी देखा होगा, आपने कभी रेनबो देखा होगा, कभी तो देखा होगा। तो रेनबो में आपने देखा होगा कि आपको पूरे के पूरे हो सकता है सात रंग ना दिखें, एक आधे रंग दिख जाए, दो रंग दिख जाए या फिर तीन रंग दिख जाए। तो इस तरीके से कुछ तो कलर्स आपको कभी दिखे होंगे रेनबो का फॉर्मेशन होता हुआ। तो रेनबो जो फॉर्मेशन होता है ये भी बेसिकली डिस्पर्शन ही है, लेकिन ये नेचर में हो रहा है, नेचर खुद कर रही है। हम लोगों ने तो यहाँ पर एक्टिविटी की और प्रिज्म से पास करा के डिस्पर्शन कराया, लेकिन नेचर जो है वो खुद डिस्पर्शन करती है। अब यहाँ पर नेचर कहाँ से करती है आप सोच रहे होंगे, वहां ग्लास कहाँ से आया, किस तरीके से डिस्पर्शन होता है। तो ज्यादा तकलीफ मत दीजिए खुद को, बेसिकली क्या होता है कि जो ग्लास प्रिज्म है वो क्या है, यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर हो ये रहा है कि लाइट जो है जब वो डिफरेंट मीडियम से पास होती है तो रिफ्रैक्शन होता है उसमें। अब इसके लिए जरूरी नहीं है कि हमें ग्लास ही चाहिए, रिफ्रैक्शन कराना तब भी हो सकता है कि अगर वो कोई ऐसे मीडियम से पास करे लाइट जहां पर दो अलग अलग मीडियम है, दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का अलग अलग है लेकिन दोनों ट्रांसपेरेंट है। तो यहाँ पर जो नेचर में डिस्पर्शन होता है वो कब होता है, वो तब होता है जब कभी आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा कि कभी भी जब डिस्पर्शन आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है वो कब दिखता है, बारिश होने के बाद दिखता है, या फिर आपने कहीं पर पानी बहुत छिड़का हुआ है वाटरफॉल के करीब कहीं दिखता है। तो इस तरीके से कभी भी जब भी आपको रेनबो दिखेगा तो वो ऐसी जगह दिखेगा जहाँ पानी के कण बहुत सारे हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो पानी की जो बूंदे होती हैं ये ग्लास प्रिज्म का काम करती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइट है वो हमारी पानी की बूंद पर पड़ती है। अब लाइट जैसे ही पानी की बूंद पर पड़ती है तो वो एयर से पानी की बूंद के अंदर पहुंचती है। दोनों का मीडियम अलग अलग है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। तो यहाँ पर जैसे ही सनलाइट पानी की बूंद पर पड़ती है और एंटर करती है पानी की बूंद के अंदर, तो वो अपना रास्ता बदलती है, रिफ्रैक्शन होता है वहां पर। उसके बाद ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई है पानी के बूंद के अंदर, ये क्या करती है, जैसे ही पानी की बूंद के अंदर ये रिफ्रैक्ट हुई है तो वहां पर एक और कर्वेचर उसे मिलता है जिस पर ये टकराती है और इंटरनली रिफ्लेक्ट होती है। अंदर एक रिफ्लेक्शन का भी फिनोमेना देखने को मिलता है, जैसे आप लोग कर्व्ड मिरर्स में देखते हैं किस तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, टकरा करके वापस बाउंस बैक होता, इसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, पानी की बूंद के अंदर रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ पर अंदर रिफ्लेक्शन हो गया, वापस उसके बाद रिफ्लेक्शन होने के बाद ये इस बार बाहर आएगी, अंदर एक बार रिफ्लेक्शन कर लेगी इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके बाद बाहर निकलेगी। तो इस बार जब ये बाहर निकलेगी तो ये पानी की बूंद से एयर में आ रही है, तो यहाँ पर अब आपको डिस्पर्शन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से ये थोड़ा सा फिनोमिना जो है, ये तीन चीजें यहाँ पर होती हैं बेसिकली। पहले तो पानी की बूंद में, जब हवा से पानी की बूंद के अंदर लाइट एंटर कर रही है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ, फिर एक इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, उसके बाद एक और यहाँ पर रिफ्रैक्शन हुआ जो डिस्पर्शन में रिजल्ट करता है। तो यहाँ पर तीन चीजें, तीन स्टेप्स होती हैं जिसके बाद जाकर के आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर 11.8 आपको दिखाया गया है, पेज नंबर 194 पर फिगर 11.8, इसमें देखो पानी की बूंद दिखाई गई है। ये जो स्फीयर आपको ड्रॉ करके दिया है, ये पानी की बूंद है, रेन ड्रॉप है या फिर कोई भी पानी का बूंद है। तो इस पर बाहर से जब लाइट पड़ रही है तो वो रिफ्रैक्ट हुई, उसके बाद उसने इंटरनली रिफ्लेक्शन किया और उसके बाद बाहर आई तो डिस्पर्शन हुआ। साथ में ये क्यों हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि लाइट रिफ्रैक्ट हो रही है लेकिन डेविएट भी हो रही है साथ में, और सभी अलग अलग कलर की लाइट जो है वो अलग अलग डेविएट हो रही है, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पर रेनबो का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब यहाँ पर अगर आप इस डायग्राम को और ध्यान से देखेंगे, फिगर 11.8 पेज नंबर 194 पर जो ये डायग्राम है इसे और ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं, जो सनलाइट पड़ रही है उसके उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में निकल करके ये जो आप लोगों को रेनबो दिख रही है उस वो कैसे दिख रही है, वो जिस रास्ते से सनलाइट जा रही है उसके उल्टे डायरेक्शन में रेनबो जा रही है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। तो सनलाइट कहाँ से आ रही होगी, सनलाइट जैसे मान लो आप देख रहे हो रेन ड्रॉप की तरफ, तो आपके हेड के पीछे होगा सन, उससे रोशनी निकल रही होगी और वो रेन ड्रॉप्स पर पड़ रही होगी, और फिर रेन ड्रॉप से पूरा रिफ्रैक्शन होके, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर के, और उसके बाद डिस्पर्शन होकर के आपको रेनबो का फॉर्मेशन दिखेगा। तो जब भी कभी आपको अगर रेनबो देखना है तो आपके सिर के पीछे होना चाहिए सन, तभी आपको रेनबो का फॉर्मेशन जो है वो दिखेगा। तो यहाँ पर आप अगर आपको देखना हो कभी रेनबो देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, कभी बारिश हुई हो और जस्ट उसके बाद धूप निकल आए तो आप क्या करिए, जिस भी तरफ सूरज है उसको अपने सिर के पीछे करिए, आप आपका बैक जो है वो सूरज को फेस करना चाहिए, आपका सिर जो है उसके पीछे होना चाहिए सूरज, और आप फिर देखेंगे आसमान की ओर तो आपको हो सकता है रेनबो दिख जाए। और अगर मान लो कि आप किसी वाटरफॉल की तरफ से देख रहे हैं तो वाटरफॉल से देखते वक्त आपको क्या करना होगा कि आप वाटरफॉल को फेस करेंगे और आपका हेड जो है वो सन को फेस करेगा, तो इस तरीके से आपको दिख सकता है। तो वाटरफॉल या फिर फाउंटेन जो है उसके थ्रू भी आप देखेंगे और आपके पीछे होना चाहिए सन, तो ऐसे में भी आपको रेनबोज दिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है अबाउट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। इतने समय से हम रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं कि जब भी कभी लाइट जो है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडियम में एक से दूसरे में जब एंटर करती है जिनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग हो, तो वो अपने पाथ से जरा सा हट जाती है, वो अपने पाथ को फॉलो करना, प्रीवियस पहले वाले पाथ को फॉलो करना छोड़ देती है, अब दूसरे रास्ते से वो चलने लगती है, तो इसे रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब ये रिफ्रैक्शन हमने एटमॉस्फेयर में भी कभी ना कभी देखा है, नोटिस किया है, बस हम शायद समझ नहीं पाए उस वक्त कि ये हम रिफ्रैक्शन देख रहे हैं। आपने कभी देखा होगा, आप कभी किसी होटल में जाइए जहाँ कोई ढाबा वगैरह जो होता है वहां पर जाइए जहाँ पर बहुत बड़े से उस पे खाना बनाते हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, तो उस वक्त जब वो बहुत बड़े से चूल्हे पे खाना बनाते हैं तो वहां पर आग जो होती है वो भी बहुत बड़ी होती है, तो इसके थ्रू आपको बहुत अच्छे से देखा होगा, कभी आपने देखा होगा कि जहाँ पर आग वो लोग जलाते हैं उसके ऊपर की जो हवा होती है, उसके ऊपर जो एयर होती है, आग के ऊपर वाली जो एयर होती है वो थोड़ी सी ऐसी लगती है कि अगर उस ऊपर वाली हवा के थ्रू किसी चीज को देखें तो वो हिलती डुलती सी लगती है, भले ही वो स्टेशनरी खड़ी कोई चीज है लेकिन उस हवा के थ्रू हम देखें तो हमें वो मूव करती हुई दिखती है। तो अगर आपने ये कभी नोटिस नहीं किया है तो आप नोटिस कर सकते हैं। जैसे किसी बड़े कहीं पर भी आप देखिए, जहाँ पर एक बड़ा स्टोव रखा गया हो या फिर बड़ा सा कोई चूल्हा रखा गया हो, बड़ा गैस रखा गया हो, जहाँ की फ्लेम बड़ी हो, ऐसी जगह पर आप कभी जा करके देखेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि जहाँ पर फ्लेम बड़ी हो वहीं पर आपको अच्छे से दिखेगा। इसीलिए मैंने बोला कि आप बड़ी फ्लेम वाली जगह पर देखें। वैसे ये फिनोमेना होता तो छोटी फ्लेम के पास भी है, लेकिन आपको उतना क्लियर दिखेगा नहीं। तो आप ऐसी जगह किसी होटल वगैरह में जाएं, ढाबे वगैरह में जाएं जहाँ पर बड़ी फ्लेम हो, तो आप दूर से खड़े होकर के देख सकते हैं कि जो फ्लेम है उसके ऊपर की जो एयर है वो उसके, अगर उस एयर के थ्रू आप किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो भले ही वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, एक्चुअल में स्टेशनरी है, लेकिन अगर आप उस एयर के थ्रू देखेंगे, आग के ऊपर वाली एयर के थ्रू देखेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट आपको मूव करता हुआ सा लगता है, हिलता सा लगता है, अपनी जगह से बार बार हिलता डुलता सा, फ्लिकर करता हुआ लगता है, वेवर, यानी कि वो आपको मोशन में लगेगा, वो आपको स्टेशनरी नहीं लगेगा। तो ये एक फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये हमें क्यों दिखता है रिफ्रैक्शन की वजह से। तो आप इमेजिन करिए, आप खड़े हैं, आपके सामने एक बड़ा सा चूल्हा है, उस पर बहुत बड़ी सी आग जल रही है, आग के ऊपर वाली जो एयर है वो गर्म होगी, गर्म हवा जो होती है वो गर्म होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, हल्की हो जाती है वो। तो आग के ऊपर वाली, फायर के ऊपर वाली जस्ट जो एयर है वो भी गर्म है, तो उसकी डेंसिटी डिक्रीज हो गई। तो इसकी तो एक तो मास डेंसिटी डिक्रीज हुई है, साथ में इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिक्रीज हो जाती है, तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया आग के ऊपर वाली एयर का। लेकिन आग से जो दूर वाली हवा है वो सबकी सब ठंडी है कंपैरेटिवली, जो आग के जस्ट पास वाली हवा है वो सारी की सारी कैसी है, गर्म है, तो उसकी डेंसिटी कम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कम है और ऑप्टिकल डेंसिटी भी कम है, साथ में मास डेंसिटी भी कम है। लेकिन इससे दूर, आग से दूर जितनी भी हवा है उसकी कैसी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो ज्यादा है क्योंकि वो गर्म नहीं है, वो तो ठंडी है। तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि एयर ही है, हर जगह तो एयर ही है, लेकिन आग के पास वाली एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है और आग से दूर वाली एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठंडी होने की वजह से उस हवा की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, सॉरी ज्यादा है। तो जो कूलर एयर है, जो ठंडी हवा है, उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, जो गर्म वाली हवा है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो जब भी मान लो कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है जिसे आप देख रहे हैं, और उसको आप कहाँ से देख रहे हैं, उसको आप देख रहे हैं आग के ऊपर वाली जो हवा है, गर्म वाली हवा, उसके थ्रू आप देख रहे हैं, तो आग से दूर वाली जो जितनी भी सारी हवा होगी वो ठंडी होगी, तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा कि जब लाइट आ रही होगी, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आ रही होगी उसको जब मूवमेंट करनी है, तो वो बेसिकली अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से मूवमेंट कर रही है। कभी तो वो कूल हवा में मूव कर रही है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, फिर उस कूल हवा से जब वो हल्की हवा में आ रही है, गर्म हवा में आ रही है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो वो रिफ्रैक्शन हो रही है उसकी लाइट का। तो हम देख पा रहे हैं कि लाइट सेम मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही है। जब वो ठंडी हवा में ट्रैवल कर रही है तो उस वक्त उस ठंडी हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। अब जब वो ठंडी हवा से गर्म हवा में लाइट एंटर कर रही है तो गर्म हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम कूलर एयर टू हॉटर एयर, हॉट एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो इसमें जब जैसे ही लाइट एंटर करेगी तो यहाँ पर वो अपने पाथ से भटकेगी, वो उसका पाथ चेंज हो जाएगा और वो किस तरीके से मूव करेगी, वो नॉर्मल से अवे चली जाएगी, इस तरीके से मूवमेंट करेगी। और जब भी कभी आपको नॉर्मल बनाना होता है तो वो नॉर्मल आप ऐसे बनाते हैं कि दो रिफ्रैक्टिव मीडियम्स जिस जगह पर मिल रहे हैं उस जगह पर, उस मीडियम से, जब मान लो कि कूल एयर है एक जगह और एक जगह हॉट एयर है, तो वो जगह जहां पर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं वहां पर, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं बेसिकली। तो जहां पर ये कॉन्टैक्ट में होते हैं दोनों मीडियम्स, उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है और इस परपेंडिकुलर से अवे चली जाएगी हमारी लाइट जब वो हॉट एयर में एंटर करेगी फ्रॉम कूल एयर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रिफ्रैक्शन तो ऑब्वियसली होगा क्योंकि लाइट ने एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से दूसरे अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में एंटर किया। इसी वजह से हम लोग को जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है वो भी हमें स्टेशनरी नहीं दिखता अगर हम इस तरीके से देखें। अगर हम किसी बड़ी सी आग के ऊपर वाली जो हवा है उसके थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो हमें स्टेशनरी नहीं दिखता, भले ही वो हकीकत में स्टेशनरी है, फ्लिकर करता हुआ दिखता है, थोड़ा सा हिलता हुआ मोशन में दिखता है। तो यही रीजन है, रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको ये दिख रहा है। तो ये तो एक फिनोमेना हो गया। अब दूसरा पढ़ना है हमें अबाउट ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। स्टार्स आपने देखे होंगे, आपको लगता है स्टार्स जो है वो ट्विंकल करते हैं, इस तरीके से आपको लगता है कि चम 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 इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये क्यों होता है, इसके पीछे का कारण हम यहाँ पर अभी समझेंगे। देखो होता क्या है, स्टार जो है वो बहुत दूर है, अर्थ से बहुत दूर है, और उस स्टार और अर्थ के बीच में सारा एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कांस्टेंट नहीं होता है। जैसे जैसे हम नीचे को आते जाते हैं, जैसे जैसे आप करीब आते जाते हैं, धरती के सरफेस के करीब आते जाते हैं, वैसे वैसे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो बढ़ता जाता है। जितना ऊंचाई पे जाओगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटता जाएगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एटमॉस्फेयर का कांस्टेंट ही नहीं है। तो अगर स्टार से कोई लाइट ट्रैवल करके धरती पर आएगी, हमारी आंखों में पड़ेगी, तो वो तो एक कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम में ट्रैवल नहीं कर रही है। वो जब ट्रैवल कर रही है तो वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम्स को क्रॉस करने के बाद हमारी आईज में एंटर कर रही है, जिसकी वजह से कभी तो हमें लगता है कि स्टार यहाँ है, कभी लगता है स्टार वहां है। ट्विंकल सा करता हुआ लगता है हम लोगों को, वो चम 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 इस तरीके से लगता है। तो वो इसीलिए लगता है क्योंकि ग्रेजुअली जैसे जैसे आप धरती के करीब आते जाते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाती है, और इसमें क्या होता है कि लाइट जो स्टार से आ रही है, वो लाइट जहां पर स्टार है वहां की जो एयर है उसके कंपैरेटिवली जो हमारे पास की एयर है, धरती पर जो एयर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। तो लाइट इज एंटरिंग फ्रॉम लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम टू डेंस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम, जिसकी वजह से वो जब बेंड होगी तो वो कहां बेंड होगी, टूवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो इस तरीके की बेंडिंग दिख रही है, तो रिफ्रैक्शन दिख रहा है, तो रिफ्रैक्शन की फिनोमेना की वजह से ही हमें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स दिखती है। और इसी रिफ्रैक्शन की वजह से ही आपको स्टार जो है वो जहां पर एक्चुअली प्रेजेंट है उससे थोड़ा ऊपर हमें नजर आता है। एक्चुअली जहां पर प्रेजेंट है वो वहां ना नजर आकर के थोड़ा सा अबव, अपनी पोजीशन के अबव हमें नजर आता है, जो आप लोगों को फिगर 11.9 पेज नंबर 194 पर डायग्रामेटिकली शो किया गया है। अब दूसरा जो फ्लिकरिंग इफेक्ट होता है स्टार का, एक तो ये तो है कि पोजीशन ही वेरिएशन दिख रही है रिफ्रैक्शन की वजह से, और रिफ्रैक्शन की वजह से ही एक दूसरी भी फिनोमिना दिखती है, वो भी आपको क्यों दिखती है, क्योंकि एयर का मीडियम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से जैसे आपने अभी प्रीवियसली देखा था कि आग के ऊपर वाली जो एयर है उसके थ्रू अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखें तो वो हमें मोशन में दिखती है स्टेशनरी होने के बावजूद भी, तो सिमिलर इफेक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलता है। स्टार जो है वो स्टेशनरी भले ही है, उसकी मूवमेंट बहुत स्लो है, नियरली उसे स्टेशनरी मान के चलते हैं। ऑल्दो स्टार्स वगैरह सारे प्लैनेट्स जो है वो मोशन करते हैं सन के अराउंड, लेकिन हम ऑलमोस्ट उसे स्टेशनरी मान करके चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो स्टार है उसे धरती के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी माने तो हम देखते हैं कि वो स्टार जो है अगर वो मोशन में नहीं है उसके बावजूद भी हमें वो ट्विंकल ट्विंकल करता हुआ क्यों दिखता है, कभी मोशन में दिख रहा है इसका मतलब है कभी चमक रहा है कभी नहीं चमक रहा है। तो वो इसलिए दिखता है क्योंकि जो एयर है बेसिकली जो सेपरेट कर रही है स्टार को और हमें, तो वो एयर की डेंसिटी सेम नहीं है। कौन सी डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी सेम नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट नहीं है, जिसकी वजह से फ्लिकरिंग इफेक्ट होती है और ट्विंकलिंग दिखती है स्टार्स की। तो रिफ्रैक्शन की वजह से दो चीजें हमें स्टार में दिखती हैं, एक तो उसका पोजीशन हम लोगों को अलग दिखता है, जैसा वो जहां पर है उसके अलग हमें उसकी पोजीशन दिखती है, दूसरी उसकी जो लाइट है वो फ्लिकर करती हुई लगती है। तो ये दोनों की दोनों रिफ्रैक्शन की वजह से दिखती है। और स्टार का कभी ब्राइट दिखना कभी फेंट दिखना, पोजीशन कभी इधर थोड़ा सा कभी उधर, इस तरीके से दिखना, हल्का बहुत वेरिएशन होता है पोजीशन में, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होता है, थोड़ा सा वेरिएशन होता है, तो ये सारा ट्विंकलिंग इफेक्ट ऑफ स्टार्स कहलाता है और ये रिफ्रैक्शन की वजह से दिखता है। तो इतना आपको समझ में आ गया, बाकी की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज आपने जो पढ़ा है उसे आपको रिवाइज कर लेना है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आपको कोई डाउट्स हो तो आप अपने टीचर से जरूर पूछिए। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।